الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کی آیت 111 ہے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ پچھلے یہ بات یاد ہوگی کہ ہم نے یہ بات قرآن مجید نے بتائی تھی کہ یہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ودا کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ آیت نمبر 109 میں بات ہوئی تھی کہ یہ تمہیں دوبارہ کافر بنانا چاہتے ہیں اہل کتاب جو ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان جملوں کو یہاں ذکر کیا ہے، ان باتوں کا جو مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ایمان سے پھیرنے والے جملے تھے یا باتیں تھیں. اس میں پہلا جملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. یہ کوئی مل کر نہیں کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جملہ اس طرح سے بیان کر دیا. یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو کے تو جنت میں جاؤ گے، عیسائی کہتے تھے کہ نصارہ کہتے تھے کہ نصرانی ہو جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، الگ الگ طور پہ وہ کہتے تھے. تو یہ اب ایک جملہ ہے جو ایک عام آدمی کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا، کیونکہ ایک امت شروع سے کھڑی ہے، اس کو صدیاں بیت چکی ہیں، اور عرب بھی ان کو مانتے تھے کہ ہاں یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت موجود ہے. تو جب وہ یہ جملہ بولتے تھے کہ بھئی جنت میں تو بس ہم میں سے کوئی جائے گا، تو جو عام سادہ لوگ مسلمان ہو سکتے تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جنت میں تو بس یہی دو جائیں گے، اپنی اپنی قوم کے بارے میں وہ کہتے تھے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تل کا امانی یو، یہ ان کی تمنائیں ہیں، داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، باتیں ہیں جو انہوں نے تراش لی ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جملہ بہت سخت بھی ہے اور بہت حکمت پر مبنی بھی ہے، اور کچھ حقیقتیں بھی کھولتا ہے کہ دین جو ہے وہ میری آپ کی تمناؤں کا نام نہیں ہے. اس بات کا نام نہیں ہے کہ مجھے یہ بات اچھی لگ رہی ہے، آپ کہیں گے مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے. نہ دین اس بات کا نام ہے کہ کون سی بات لاجک پہ پوری اتر رہی ہے اور کون سی بات لاجک پہ پوری نہیں اتر رہی. دین اس بات کا نام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دی. اللہ کے رسول کا نام بھی ہم اپنے عقیدے کی وجہ سے کہتے ہیں، دراصل پیچھے وہاں بھی اللہ ہی ہوتے ہیں کہ جو بات اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو بات اللہ تعالیٰ کہہ دیں نہیں ماننی وہ نہیں ماننی، اس کا نام دین ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہیں نہیں کہا کہ یہودی اور نصرانی جنت میں جائیں گے، کہیں نہیں کہا. تو اس لیے فرمایا کہ تل کا امانی ہو، یہ ان کی بات تمنائیں ہیں، خواہشیں. ہم مسلمانوں نے بھی اپنی تمنائیں بہت زبردست قسم کی بنا رکھی ہیں. ہم کہتے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے رسول کی امت میں سے تو ہیں، تو جو کچھ ہوگا بس تب بھی ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور جس نے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلا جائے گا، یہ اسی طرح کے بیانات ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، یہ بس ان کی تمنائیں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور تمناؤں کا جواب مزید محکم کرنے کے لیے فرمایا کل، ان سے کہہ دو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی برہان لے کر آؤ، کوئی ثبوت لے کر آؤ. برہان بہت واضح دلیل کو کہتے ہیں جو دوسرے کو خاموش کرا دے. تو کوئی ایسی بات لے آؤ، تورات کا کوئی جملہ لے آؤ، کوئی انجیل کا کوئی جملہ لے آؤ، جس سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے کہ جو ملت یہودیت میں داخل ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، یا جو ملت نصارہ میں داخل ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، یا جو ملت اسلامیہ میں داخل ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. یعنی نام کے مسلمان ہو گئے، نام کے یہودی ہو گئے، نام کے ایسا کہیں اللہ نے کہا ہے؟ تو اگر کہا ہے تو دلیل لے کر آؤ. اب آگے مزید جواب دیا کہ جنت میں کون جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر یہودی غیر نصرانی جنت میں ضرور جائیں گے. بلا کا مطلب یہ ہے، بلا کیوں نہیں جائیں گے جنت میں؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہ ہوا محسن، اور وہ نیک بھی ہوا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر تیرے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی پچھتاوا ہوگا. اس آیت کو سورہ البقرہ کی 62 نمبر آیت کے ساتھ موازنے میں دیکھنا چاہیے. وہاں یہ فرمایا تھا کہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ اگر اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے تو آگے یہی بات تھی کہ ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. یہاں ایمان کی بجائے اور آخرت پر اللہ کی ایمان کے بجائے اسلم وجہہ للہ بولا گیا ہے. یہ یہود کی رعایت سے بولا گیا ہے. یہود ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی بات کے آگے سر نہیں جھکا رہے تھے. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہماری مرضی کا رسول آ جائے، یہ میکائیل نے غلطی کر دی، یہ جبرائیل نے غلطی کر دی نعوذ باللہ، تو ہماری مرضی کا ہمارے خاندان میں سے رسول آ جاتا تو ہم مان لیتے ہیں، اور جو ہمارے اوپر نازل ہوا تو ہم مانتے ہی ہیں، ہم یہ دعوے ان کے پڑھ چکے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کہ خدا کی مرضی کے آگے جھک نہیں رہے. تو فرمایا کہ جو بھی اللہ کی مرضی کے آگے جھک جائے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ گویا جواب دیا، ان کو آئینہ دکھا دیا گویا. یہ نہیں کہ کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جو اصولی بات ہے، بلکہ مخاطب کے لحاظ سے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ صحابہ میں اور یہود کے اس وقت کے یہود میں فرق کیا ہے. کہ ابو بکر و عمر نے خدا کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا ہے، انہوں نے اپنے بت چھوڑ دیے ہیں، انہیں اپنے دیوتا چھوڑ دیے ہیں، لیکن تم اپنی پسند کو چھوڑ نہیں پا رہے ہو. چاہتے ہو کہ بس ہماری بات مان لی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے آگے. دین کی حقیقت یہی ہے. دین اس بات کا نام نہیں ہے کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا، اس بات کا نام نہیں ہے. یہ تو پھر آپ نے مشروط طور پر سر جھکایا کہ میں وہ بات مانوں گا جو مجھے سمجھ میں آ جائے گی. یہ دین نہیں ہوتا. والد صاحب کہیں بیٹا پانی پلاؤ، کہیں سمجھ آنی چاہیے اس وقت واقعی آپ کو پیاس لگی ہوئی، تو باپ کی فرما برداری نہیں ہوئی. ایسا ہی خدا کو جب ہم نے خدا مان لیا تو اس کی فرما برداری میں آنا ہے. حکم کیسا بھی ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں کہ بھائی رات ساری بھوکا رہنا ہے، رہا جائے گا. آپ کہیں گے بڑی کمزوری ہو جائے گی، جوڑ ہل جائیں گے، پیٹ بیماری آ جائے گی، کوئی کمزوری لاحق ہو جائے گی، کوئی امیونٹی ختم ہو جائے گی. اللہ نے کہا کہ نہیں، رمضان کے روزے تم نے فاقے کرنے ہیں سارا دن. کہا ہے نا، مجبوری. سمجھ آئے نہ آئے، آج کل تو خیر روزے کی بڑی فوائد سامنے آ گئے ہیں، لیکن فوائد کے بغیر ماننا ہے. تابع داری تو یہی ہوتی ہے. یہ کیا تابع داری ہوئی، بات سمجھ میں آ جائے گی تو مان لیں گے؟ یہ تو کوئی تابع داری نہیں ہے. تو خدا کے حضور ہمارا جو اس وقت سر سید احمد خان، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، سر سید احمد خان کے بعد ہمارا دین کا تصور یہ بن گیا کہ اچھا جی، دین دور جدید میں کمپیٹیبل ہے، دور جدید میں چل سکتا ہے. علامہ اقبال کو بھی ایک خطبہ لکھنا پڑ گیا کہ آج کی دنیا میں مذہب کا کیا مقام ہے، کیا واقعی مذہب چل سکتا ہے؟ تو یہ چیز مذہبی آدمی کی چیز نہیں ہے. اس کو صرف دو باتوں پہ سوال ہو سکتا ہے، وہ دین سے باہر ہے، کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. یہ جب مان جائے گا تو پھر اگلی بات، یہ اگلی بات ہو سکتی ہے، اگرچہ ہمارے خیال میں وہ بھی فطری بات ہے، لیکن ہم اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے کہ بھائی اللہ ہے یا نہیں ہے. لیکن جب اللہ کو مان لیا ہے تو اب ساری بحثیں ختم ہو جاتی ہیں. اب صرف اتنا ثبوت ہوگا کہ یہ اللہ کی بات ہے کہ نہیں ہے، اس کا ثبوت ہونا چاہیے. اگر اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے تو سمجھ آئے نہ آئے، ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو مانا جائے. میری بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا حکم نہیں دیا جو نعوذ باللہ کو احمقانہ ہو، لیکن مذہبیت یا دینداری اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بس وہ بات مانیں گے جو سمجھ میں آ جائے. آج بھی بڑے بڑے فنکار، انہوں نے آیتوں کا انکار کرنا پڑا، آیتوں کی تعویل ایسی کرنی پڑی جو لفظ نہیں کہہ رہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں آدھا حصہ دینا ہے، عورتوں کی گواہی آدھی ہوتی ہے. خیر قرآن نے یہ نہیں کہا، لیکن بہر جو اس کا یہ مطلب لیتے ہیں انہوں نے، جو اس کا مطلب کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی کو تم مار سکتے ہو بعض مجرمانہ حالتوں میں، تو ان آیتوں کے مطلب تبدیل کیے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دور جدید میں چل نہیں سکتے، عورت آزاد ہو گئی، اس کو کیسے کہیں گے کہ الرجال قوامون علی النساء، کیسے سمجھائیں گے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ہم نے دین کا اتنے حصے کو مانا جو ہماری پسند کا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، برہان ہونی چاہیے تمہارے پاس. कि किताबुल्लाह में है या नहीं है। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि नहीं है, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हो, अगर है तो मानना पड़ेगा। यह है वो दीन का तसव्वुर जो वाज़ेह होता है। हम खुदा पर बहस कर सकते हैं कि है या नहीं है, और ये इस पर बहस कर सकते हैं कि ये कलाम अल्लाह का है कि नहीं है। जब ये दोनों बातें साबित हो जाएंगी तो बस। अब ये बात अलबत्ता अलग है कि हमने इसको भी अकल से समझना है, ऐसा नहीं कि इसके वो मानी ले लिए जाएं जो ना लफ्ज़ कह रहे हैं ना कोई अकल कह रही है। वो एक अलग चीज़ है कि वहाँ पर भी गलतियाँ हम बेवकूफ़ी की कर सकते हैं उससे बच कर, क्योंकि ये कुरान भी अकल वालों के लिए है, ऐसा नहीं है कि बेअकल लोगों के लिए। तो फरमाया मन असलम वजहहु लिल्लाह, जिसने अपने आप को अल्लाह के, अपने चेहरे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अपना रुख अल्लाह की तरफ अल्लाह के हवाले कर दिया। असलमा ही से इस्लाम निकला है, चेहरे से मुराद शख्सियत होती है, अपना सब कुछ खुदा के सुपुर्द कर दिया, खुदा के आगे झुका दिया, और वो नेक भी हुआ। मोहसिन जो है ये कुरान मजीद की काफ़ी बड़ी इस्तलाह है। एहसान अपनी बुनियाद में अच्छे काम करने को कहते हैं, एहसान अपनी बुनियाद में अच्छे काम करने को कहते हैं, उसी से मोहसिन बना हुआ है। अहसना से इसमें फ़ाइल है, इसके अंदर नेकी करने का मफहूम होता है, अच्छे काम करने का मफहूम होता है, अच्छे तरीके से काम करने का मफहूम होता है, अच्छा सलूक करने का इसके अंदर मानी होते हैं। तो यहाँ ये अपने बुनियादी मानी में नेकी करने वाला नेक आदमी, वो जिसने अल्लाह के हवाले कर दिया अपने आप को, और वो नेक भी हुआ, उसने अपने इस मामले में खलूस के साथ मामला किया। एक असलमा वजहुल्लाह होता है मजबूरी में। कोई भी रियासत जब बनी मदीना में और फिर पूरे अरब में फैल गई, तो कई लोगों ने असलमा वजहुल्लाह कर दिया हुकूमत के डर से, वो मतलूब नहीं है, उससे आखरत में कुछ नहीं मिलेगा। तो यूं समझ लीजिए कि इसका एक मुतबादल अगर बोला जाए कि वो मुखलिस भी हुआ, मुखलिसाना तरीके से सच्चाई के साथ अल्लाह के हवाले किया अपने आप को, तो उसका अजर अल्लाह के पास है, यानी पक्का सच्चा दिल के साथ उसने ऐसा मामला किया। अगर वो मोहसिन जो है वो जालिम जालिमुन नफ्स ही का उलट भी है, अगर अपनी जानों पर जुल्म ढाते हुए किया तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। तो फरमाया कि तुम ये कहते हैं कि या यहूदी जन्नत में जाएंगे या नसरानी जन्नत में जाएंगे, तो इनके ये ख्वाहिशें या तमन्नाएं हैं, हकीकत में कुछ नहीं है। अगर हकीकत है तो कोई सबूत लेकर आओ। याद रखो कि हर वो आदमी जन्नत में जाएगा जिसने अपने आप अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, और वो खलूस दिल के साथ पूरी नेकी के साथ उसने ऐसा किया, तो उसका अजर उसके रब के पास महफूज है, उसके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा और कोई हुज़्न नहीं होगा। ये जन्नत का बयान है, उसके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा, कोई हुज़्न नहीं होगा। जन्नत की ताबीर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसी तरह से की है। दुनिया की ज़िंदगी में दो ही चीज़ें हैं, माजी के पछतावे हैं, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, काश ऐसा ना हुआ होता, काश वो ना हुआ होता, ये हुज़्न होता है। और खौफ ये होता है कि पैसे छिन जाएंगे, ज़िंदगी चली जाएगी, मौत आ जाएगी, कोई दुश्मन ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। ये दोनों चीज़ें वहाँ ख़त्म हो जाएंगी, माजी के पछतावे ख़त्म हो जाएंगे, और मुस्तकबिल के जितने खौफ हैं कि मौत आ जाएगी या से सब कुछ छिन जाएगा। अब हमारी सूरत हाल बुढ़ापे में पांव रख रहे हैं तो ऐसे ही लगता है कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, 10 साल पहले ख्याल भी नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा होता है कि बस जाने का वक्त है, को मामला समेटने समेट लीजिए। तो उसकी वजह क्या है कि मौत का एक डर लगा हुआ हर वक्त, पता है मर जाना है सबने। तो फरमाया कि वला खौफ अलैहिम, कोई डर नहीं होगा, ना नेमतें जो जन्नत में मिलेंगी उनके छिनने का डर होगा, और ना जो ज़िंदगी मिली होगी उसके जाने का डर होगा, और ना माजी के पछतावे। ये अल्लाह ताला ने एक और भी बात बयान की है कुरान मजीद के, जो गिल हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमारे जज्बात होते हैं। जो दो आदमी जन्नत में चले गए, मसलन दो मियां बीवी चले गए, और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, तो अल्लाह ताला उनके दिलों से वो चीज़ निकाल देंगे, अब वो पसंद करने वाले बन जाएंगे, दो दोस्त पसंद करने वाले बन जाएंगे। और मैं ये एक मेरे दोस्त हैं, वो बरेलवी हैं बड़े पक्के, उनसे कहा करता हूँ कि रेलवियों और देवबंदियों की जो आपस की दुश्मनी है वो भी अगर जन्नत में चले गए तो ख़त्म हो जाएगी। तो ये इस तरह से अल्लाह ताला उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिलों से निकाल देंगे, एक मोहब्बत यगानगत एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ और एहतराम पैदा हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये अब उनका गुमराह करने वाले जुमलों में एक मौसर तरीन जुमला था कि भाई जन्नत में तो सिर्फ या यहूदी जाएंगे या नसरानी जाएंगे। उसको अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाजे कर दिया एक पहलू से। अब दूसरा जवाब दिया अल्लाह ताला ने, ये भी उनके बात के रद्द में है। उनकी जो कहानी है, पहले उसको बताया कि ये कहानी है, कोई दलील नहीं है, और फिर असूल बता दिया कि कामयाबी का असूल तो अल्लाह के आगे झुक जाना, वो तुम झुक नहीं रहे हो तो कैसे जाओगे, आईना दिखा दिया गोया। अब दूसरा आईना दिखा रहे हैं अल्लाह ताला। वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शैइन, यहूद ये कहते हैं कि नसारा किसी बात पर नहीं है। वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शैइन, और ना नसरानी, और नसरानी ये कहते हैं कि यहूदी किसी बात पर नहीं है, ना उनके पास हदायत है ना उनके पास हदायत है। तबसरा फरमाया अल्लाह ताला ने, वहम यतलून अल किताब, दोनों एक ही किताब पढ़ते हैं, दोनों की बुनियाद दीन की एक ही किताब पर है, लेकिन एक ग्रोह दूसरे को कह रहा है वो दीन पर नहीं है, दूसरा कह रहा है वो दीन पर नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है ना, देवबंदी बरेलवियों और अहले हदीस को काफ़र कहते हैं, और ये दोनों बरेलवियों को काफ़र कहते हैं, शिया सुनियों को काफ़र कहते हैं, काफ़र सुन्नी शिया को काफ़र कहते हैं। ये जो कहानी है, और सबके सब एक ही दीन पर, एक ही किताब, एक ही सुन्नत। अब ये अल्लाह ताला ये नहीं बता रहे कि ये कोई आपस में भी लड़ते रहते हैं, बताने का मकसद ये है कि इनकी इनकी बातों की हकीकत जान लो कि एक ही किताब पर दोनों का मदार है, और एक दूसरे को काफ़र कह रहे हैं। तो जो तुम्हें काफ़र कह रहे हैं, तुम्हें जन्नत में नहीं जाओगे, उसका मतलब भी ऐसा ही है, कोई हकीकत नहीं है। ये वो जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है कि ये आपस में एक दूसरे को कहते रहते हैं कि वो जन्नत में, वो उनके पास कोई हदायत नहीं है, वो कह रहे हैं उनके पास कोई हदायत नहीं है। तो फरमाया कि हालांकि किताब एक ही पढ़ते हैं, तो अगर तौरात पढ़कर तौरात के ऊपर बुनियाद रखने वाले दोनों दोज़ख में चले जाएंगे, तो तुम्हारे बारे में इनके बयान की भी हकीकत यही है। तो वहम यतलून अल किताब हैरत का जुमला है, और उनकी बात की तज़ाद फ़िक्र वाज़े करने के लिए कि ये एक ही किताब को पढ़ते हैं और ये एक दूसरे के बारे में ये बातें कर रहे हैं, तो इनकी कोई बुनियाद नहीं है, ये बस फतवे हैं। फतवे हम भी देते हैं बड़े बड़े शानदार किस्म के। तो अब ये जो बातों में तजाद होता है, ये हर वो आदमी जिसकी बुनियाद महज अपनी ख्वाहिशें और तमन्नाएं हों, जब वो बातें कर रहा होता है तो उसमें तजाद इसी वजह से आ जाता है। या तो आप फलसफियाना तर्ज पर सोचेंगे, या आप साइंस की तर्ज पर सोचेंगे, या मज़हब की तर्ज पर सोचेंगे, लेकिन अगर आपकी कोई भी तर्ज नहीं है तो आपके जवाबात में फिर कंसिस्टेंसी नहीं होगी। आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, परसों कुछ कह रहे हैं, तो अपना तजाद भी नज़र नहीं आता, क्योंकि आप तमन्नाओं का शिकार होते हैं। उसमें फिर एक ही चीज़ जोड़ने वाली होती है, वो तमन्नाएँ होती हैं, वो कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन दलाइल में फिर नहीं होती, बातों में नहीं होती। तो इन्होंने ये अब ये कहा कि भाई मुसलमान यहूदी कह रहे थे कि सिर्फ यहूदी जन्नत में जाएंगे, नसरानी कह रहे थे सिर्फ नसरानी जन्नत में जाएंगे, और मुसलमानों को ये कहते थे वो, लेकिन आपस में भी ये कहते थे। तो फरमाया कि एक ही किताब को पढ़ने वाले, चलो कुरान तो एक अलग किताब आ गई, लेकिन ये तो दोनों एक ही किताब को पढ़ते हैं, इसके बावजूद कह रहे हैं तो इनके बात की कोई अहमियत नहीं है, गोया उनकी बात की बेवजन होने को वाज़े कर दिया। कज़ाली का काल लजीना ला यालमूना मिसला कौले, इसी तरह की बात वो लोग भी कहते हैं जो नहीं जानते, बिल्कुल इनकी बात जैसी बात। ये काल लजीना ला यालमून, यहाँ किताब का लफ्ज़ हज़्फ़ है, जो किताब को नहीं जानते, यानी अहले किताब नहीं है। अहले किताब नहीं है, इसका मतलब है कि अरबों के यहाँ जितने भी लोग थे यहूद और नसारा के अलावा, वो सारे इससे मुराद हैं, कुरैश मक्का भी शामिल हैं, और जो दूसरी कौमें जो बुत परस्त रहती थी, जो अल्लाह की किताब को ना जानती थी ना मानती थी, उनकी बात हो रही है। वो सारे के सारे भी ऐसी बातें, वो भी अपने बारे में कहते हैं, कुरैश अपने बारे में कहते थे हम जन्नत में जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे, जिस तरह हम। तो ये मामला ऐसा ही था, सारी कौमें अपने अपने बारे में कह रही थी। तो फरमाया कि जन्नत में किसने जाना है, फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, ये फ़ैसले अल्लाह ताला करेंगे। एक किताब को पढ़ने वाले एक दूसरे को अगर दूसरी करार दे रहे हैं, तो इसका फ़ैसला अल्लाह ही कर सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो गोया उनकी पूरी बात को दो जवाब देकर अल्लाह ताला ने बिल्कुल खोखला, उसका खोखलापन साबित कर दिया। एक ये कि ये इनकी तमन्नाएं हैं, इससे ज़्यादा कुछ हैसियत नहीं है, और अल्लाह ने अपना असूल बयान कर दिया कि जो खुदा के आगे झुक गया नेकी के साथ ज़रूर जन्नत में जाएगा। उसके बाद उन्हीं का आपस का झगड़ा सामने रख कर बताया कि ये एक दूसरे को कहते हैं कि इनके पास तो कोई हदायत ही नहीं है। तो फरमाया कि हालांकि ये दोनों एक ही किताब पढ़ते हैं और तब भी ऐसी बातें कर रहे हैं। और फिर अगला आखिरी जुमला ये बोल कर कि इनकी बात जाहिलों जैसी है, जिनके पास किताब नहीं है, बिल्कुल ही उसका खोखलापन वादे कर दिया कि ये उस जैसे कुरैश बगैर किताब के बात कह रहे हैं, ये किताब के बावजूद कह रहे हैं, तो हकीकत क्या है, ये भी जाहिल ही हुए। तो गोया सिर्फ ये नहीं कि कुरैश और जो गैर अहले किताब थे उनकी बातों से मुमासलत साबित करके बता दिया कि तुम्हारी और उनकी बात में कोई फ़र्क नहीं है, साथ ही ये भी बता दिया कि तुम किताब के पढ़ने के बावजूद ला यालमून हो, पढ़ते नहीं किताब से, वाकिफ ही नहीं हो। तो क्या अपनी हालत भी ऐसी नहीं है? बिल्कुल वैसी है। अब ये जो लोगों के बारे में ये फैसला है कि भाई वो हदायत पर है या नहीं है, ख़ास तौर से एक ही मिल्लत के लोग, मसलन मुसलमानों के अंदर जितने मसालिक हैं, अगर कोई फ़िरका बन के अलग हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन जो मसालिक हैं वो तो बुनियादी चीज़ों पर इकट्ठे होते हैं। मसलन अगर आप मुसलमानों में देखें तो अहले सुन्नत के सारे जो मसालिक हैं वो एक अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम अंबिया को मानते हैं, जन्नत को आखरत को मानते हैं, वो रोज़े रखते हैं, 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, सब कुछ, लेकिन तब भी वो काफिर है। यानी काफिर सिर्फ इसलिए हैं कि मेरे मसलक को नहीं मानते, सिर्फ इसलिए काफिर, और कोई वजह नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें करने का हक हमें अल्लाह ताला ने नहीं दिया। फरमाया कि यह क़यामत वाले दिन मैं फ़ैसला करूँगा, तुम्हारे फैसले नहीं चलेंगे, ना तुम्हारे फैसले माने जाएंगे ना सुने जाएंगे। वजह क्या है? वजह यह कि एक आदमी मुझे काफिर लग रहा, लेकिन वो अपनी हकीकत में पता नहीं किस जगह पे खड़ा है, मुझे तो नहीं पता। बाज़ औक़ात हम एक आदमी को देख रहे होते हैं वो बुराइयाँ कर रहा है, लेकिन वो पता नहीं कितना मजबूर है, किसी ने गन पॉइंट पे उसको मजबूर कर रखा है, किसी ने उसको ब्लैकमेल कर रखा है, हमें क्या पता। तो कल क़यामत वाले दिन ही पता चलता है। इस तरह गलत फहमी है। अब एक यहूदी नसारा एक ही तौरात पर कायम है, लेकिन उनके नज़दीक शरीयत ख़त्म हो गई, उनके नज़दीक ख़त्म नहीं हुई। तो ये इतना बड़ा फ़र्क अगर पड़ सकता है तो इसके फैसले हम नहीं कर सकते दुनिया में, अल्लाह ताला ही क़यामत वाले दिन करेंगे। तो ये दूसरा जवाब था। पहला जवाब था कि कहानी है, दलील कोई नहीं है। दूसरा जवाब यह था कि ये आपस में जो ये एक दूसरे को कहते हैं कि ये हदायती पर नहीं है, हालांकि एक ही किताब पढ़ रहे हैं, तो उनकी तज़ाद फ़िक्र को वाज़ेह करके बताया कि ये बस बच्चों वाली बातें हैं, जाहिलाना, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। अब तीसरा जवाब दिया कि ये जन्नत में कैसे जाएंगे। ये ख्याल कह रहे हैं कि यहूद और नसारा जन्नत में जाएंगे। तो फरमाया कि उनसे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा? मना मसाजिद अल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह यानी युज़्करा फ़ीहा, कि उससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जिसने अल्लाह के घरों से लोगों को रोका कि उनमें आकर जिक्र करें, यानी युज़्करा फ़ीहा इस्मुहु, कि अल्लाह का नाम का जिक्र, वसा फ़ी ख़राबिहा, और ये कोशिशें करते हैं कि मस्जिदों को वीरान कर दें। उलाइका मा काना लहुम मा यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, हालांकि इन सबको ये हुक्म दिया गया था, उनके लिए जायज़ नहीं था, उनके लिए नामुनासिब था कि वो इस तरह से मस्जिदों के साथ करें, मुनासिब ये था कि वो इन मस्जिदों में डरते हुए जाएं, खुदा के खौफ के साथ जाएं। तो अब यानी बात को उलट दिया, वो कह रहे थे कि जन्नत में यहूद नसारा के अलावा कोई नहीं जाएगा, अल्लाह ताला ने कहा कि जिन्होंने मस्जिदों से रोका अल्लाह के नाम लेने से और मस्जिदों को बर्बाद किया वो तो कामयाब नहीं हो सकते। फरमाया कि लहुम फिद दुनिया खिज़्युन वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, दुनिया में भी उनके लिए रसवाई है और आखिरत में भी अज़ाब अज़ीम है। तो मतलब क्या हुआ कि यहूदी हो, नसरानी हो, मुसलमान हो, अगर इस तरह के कबीरा गुनाह करेगा तो दोजख में जाए, जन्नत में नहीं जा सकता। तो गोया जो उनका दावा था उसको पूरे को पलट के रख दिया अल्लाह ताला ने कि तुम ये कहते हो कि यहूद और नसारा जन्नत में जाएं, अपने करतूत तो देखो, अपने कहानियों की बुनियाद तो बताओ क्या है। तो इस तरह से अब जो माना मसाजिद अल्लाह, इसको समझ लीजिए, फ़िरके जितने होते हैं वो दूसरे फ़िरके को आने से रोकते हैं। अब तो खैर शहरों में काफ़ी बेहतरी आ गई है, वरना मस्जिदों के बाहर बोर्ड लगे होते थे कि ये हनफियों की मस्जिद है, इसमें कोई गैर मुकल्लद नहीं आ सकता, ये गैर मुकल्लदों की अहले हदीस की मस्जिद है, इसमें कोई ब्रेल भी नहीं आ सकता, इसमें कोई ये नहीं आ सकता। और वाक़यात सुने हैं, दो एक चीज़ें देखी भी हैं। मेरे सामने एक नमाज हम पढ़ रहे थे तो एक साहब ने ऊंची आवाज़ में आमीन कह दिया, ब्रेलवियों की मस्जिद थी। मौलवी साहब ने सलाम फेरा, खींच के थप्पड़ मारा, तुम यहाँ से निकल जाओ। और फिर उन्होंने जहाँ पर वो खड़ा था उस सब को उठाया, फर्श दुलवाया गया, फिर दोबारा नमाज पढ़ी गई। ये मैंने अपनी आँखों से देखा। तो ये अल्लाह के घर से रोकना। अब ये हमारी मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, हमारे घर हैं जिसमें हमने इजाज़त दी होती है कि नमाज पढ़ने आके। तो ये सूरत इसको कहते हैं माना मसाल, अल्लाह के बंदों को आने से रोका जाए। मस्जिद नबी में नजरान के ईसाई आए तो उन्होंने कहा हम कहाँ इबादत करें, आपने कहा मस्जिद है अल्लाह का नाम लो, मस्जिद नबी में उनको जगा दी। वो वहीं सोए भी, लेटे भी, बैठे भी, नमाजें भी पढ़ी उन्होंने। तो अल्लाह के घर से नहीं रोका जा सकता सिवाय इसके कि अल्लाह खुद फैसला कर दे, जैसा सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का के बारे में फैसला किया, वो एक अलग फैसला है। उसकी जब पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह वजाहत करेंगे, लेकिन मुझे आपको कोई हक हासिल नहीं है कि मैं कहूँ ये मुशरिक है जो मेरी मस्जिद में नहीं आ सकता, ये फलाँ है, ये फलाँ है। एक हिंदू भी अगर तौहीद के साथ खुदा की इबादत करना चाहता है तो उसको जगह देनी चाहिए, खुदा की इबादत करने आएगा बस, वो किसी मूर्ति की हम इजाज़त नहीं देंगे, बस जो हमारा अकीदा है उसके मुताबिक। वह साफ ही खराबी हम, दूसरी बात यह है कि उनको वीरान करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, मस्जिदों को बाकायदा रोका जाता है कि तुमने उसकी मस्जिद में नहीं जाना, वो गुमराह है, फलाना है, फलाना है, फलाना है, बाकायदा रोका जाता है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला कुछ दूसरा इशारा करना चाहते हैं। ये तो असूली बात है जो मैंने अर्ज़ कर दी कि रोकने से मतलब क्या है और ख़राब करने से मतलब क्या है। यहूद नसारा के यहाँ ये लंबी चौड़ी बहसें हैं, और सिर्फ यहूद नसारा के आपस में नहीं, यहूदियों की यहूदियों के लिए, नसारा की नसारा के लिए, जैसे इस वक्त मुसलमानों की देवबंदियों बरेलवियों के आपस में रही, तो ये एक दूसरे को रोकते थे मस्जिद में आने से और मस्जिदें गिराते भी थे। अबरहा ईसाई था और खाना काबा गिराने आ गया था, तो उसकी तरफ इशारा है। आगे मैं इसलिए इशारा कर रहा हूँ कि आगे खाना काबा के किबला होने की तरफ मजमून बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ इशारा करना चाह रहा हूँ कि अबरहा को याद रखिएगा। यहाँ पर अबरहा ईसाई था और वो खाना काबा को गिराने आया था। तो अमन नज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़्कर फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा, उससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो मस्जिदों में आने से लोगों को रोके कि उसका नाम लिया जाए अल्लाह का, और मस्जिदों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, हालांकि इनको हुक्म ये था, इनके लिए जायज़ ये था, इनके लिए रवा ये था कि वो इन मस्जिदों में डरते हुए दाखिल हों, सर उठा कर नहीं, सरकशी के लिए नहीं, दूसरों को रोकने के लिए नहीं। मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, हर आने वाला खुदा का मेहमान होता, तो आदमी कितना ही बदबख्त होगा कि जो खुदा के मेहमान को धक्के दे, खुदा के मेहमान को रोक दे। तो फरमाया कि ऐसा करने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। लहुम फि दुनिया खिज़्यून, दुनिया में भी इनके लिए रुसवाई है और आखरत में अज़ाब अज़ीम है। तो ये कह रहे हैं मस्जिदों से रोकने वाले, कह रहे हैं कि यहूद नसारा के अलावा जन्नत में कोई नहीं जाएगा, कि कोई जवाब ये हो गया। अभी जवाब जारी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दावा था कि तुम मुसलमान जन्नत में नहीं जाओगे, यहूदी हो जाओ तो जन्नत में चले जाओगे, दूसरे कहते थे नसारा हो जाओ तो जन्नत में जाओगे। उसका पूरी तसल्ली से अल्लाह ने जवाब दिया है। पहला ये कि कहानी है, ये किस्सा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा असूल ये नहीं है कि जन्नत में कौन जाएगा, कोई किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला जाएगा, नहीं, जो खुदा की ताबेदारी में आ जाएगा वो जाएगा। दूसरा जवाब दिया कि ये आपस में क्या करते हैं, एक ही किताब पढ़ते हुए कहते हैं कि तुम दीन पर नहीं हो, दूसरा कहता है तुम दीन पर नहीं हो, तो मतलब क्या हुआ, इनके दावे ऐसे ही हैं, बेहुदा सी बातें हैं। तीसरा कहा कि ये अपने बारे में कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, तो इनकी सूरत हाल जरा देखो, अल्लाह के घर से रोकने वाले, अल्लाह की मस्जिदों को बर्बाद करने वाले, हालाँकि इनको डरते हुए खुदा के घर में जाना चाहिए था। इनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में अजाब है। तीसरी बात, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। अब ये तमहीद भी है किबला तब्दील करने की, लेकिन मुनासिब मौके पर इस बात को किया जा रहा है। मशरिक व मगरिब अल्लाह ही के लिए हैं। फ़ाइनमा तुवल्लु, तो तुम जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी रुख करोगे, फसम्मा वजहुल्लाह, तो वहीं पे अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद होगी। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत वसी है, बहुत इल्म वाला है। अब ये ज़ाहिर है कि अमूर मुतशाबिहात में से है कि अल्लाह ताला जहाँ भी हम रुख करेंगे अल्लाह का चेहरा वहीं होगा, लेकिन जो लफ्ज़ों से बात समझ में आती है वो अर्ज़ कर देता हूँ। मशरिक़ व मगरिब अल्लाह के हैं। फ़िरकों के अंदर, ख़ास तौर से यहूद व नसारा के अंदर, ये बहसें रहती थीं कि बैतुल मक़दस का मशरक़ी किनारा किबला है कि मगरबी किनारा। गालिबन वजह यह हुई कि हज़रत मरियम जिस हिस्से में रहीं बैतुल मक़दस के, वो मशरक़ी था। कुरान ने बयान भी किया सूरह मरियम में, इत्तख़ज़त मकानन शरकिया, कुरान में अल्फाज आए हैं। तो बैतुल मक़दस में जहाँ आप ठहरी हुई थी वो मशरक़ी साइड थी। इससे अब इन दोनों अहले किताब के ग्रोहों के अंदर बैतुल मक़दस का मशरक और मगरब मसला बन गया होगा। उससे ये बहसें शुरू हो गई कि अब, और ये भी मुमकिन है कि वो अपने हिस्से में दाखिल ना होने देते हों, वो अपने हिस्से में दाखिल ना होने देते हों, या उनके जो माबद बनते होंगे वो उस रुख पे बनते होंगे, उनके जो बनते होंगे उस रुख पे बनते होंगे। ये बहसें थी। इन बहसों की वजह से ही लड़ाई होती। हमारे जो देवबंदी बरेलवियों में बहसें किस वजह से हैं? वो नूर मानते हैं, वो नूर नहीं मानते हैं, इस वजह से नहीं आने देते हैं। वो उनको शिरक मुशरक समझते हैं, उनको मुवाहिद गैर मुकल्लद समझते हैं, वो गुस्ताख समझते हैं, इसलिए नहीं आने देते। यही बहसें हैं। तो वहाँ किबले की मस्जिदों के माबद के साथ जो बहसें होती हैं, तो उसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया कि ये जिस वजह से तुम घरों के लिए लड़ रहे होते हो, तुम मेरे घर में नहीं आओगे, मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊँगा, उस तरफ मुँह करते हो तुम, हम इस तरफ मुँह करते हैं, ये बहसें क्यों? मशरक भी मेरा, मगरब भी मेरा, यानी सारी जगह ही, पूरी ज़मीन को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, एक मशरक हो जाएगा, एक मगरब हो जाएगा, पूरी दुनिया अल्लाह की है। इस रुख पे चले जाओ, उस रुख पे चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, क्या है? अल्लाह ही अल्लाह। तो अल्लाह को अगर इबादत करनी है तो अल्लाह ताला के लिए तो कोई जगह मखसूस नहीं है, कोई सिमत मखसूस नहीं है। एक तो ये बात बताई अल्लाह ताला ने, दूसरी ये बात बताई कि किसी जगह की कोई फजीलत नहीं है, ना मशरक़ की, ना मगरब की, ना जनूब की, ना शुमाल की। फजीलत तो इस वजह से होनी चाहिए ना कि अल्लाह उधर है, तो अल्लाह तो हर जगह है। तो किसी जगह की कोई फजीलत नहीं है, किसी सिमत की कोई फजीलत नहीं है, ये याद रखना, असूली तौर पर यही है। अब अल्लाह ने जब किबला तो बनवाया है तो एक हुक्म है, वो अलग से एक हुक्म है, उससे कुछ फजीलतें भी कायम हुई हैं, लेकिन असूली तौर पर ये क्या बात हुई कि मेरी चूँकि मशरक मुझे पसंद है तो मशरक किबला होना चाहिए, आपको मगरब पसंद है तो मगरब, नहीं, जिसको अल्लाह करार दे उसको होना चाहिए। वो आगे बहस आएगी इंशाल्लाह तो देखेंगे। तो मशरक और मगरब की बहस दुरुस्त नहीं है, गोया उनकी जो बहस थी आपस में मस्जिदों से रोकने की, उसकी वजह भी अल्लाह ताला ने बता दी। आगे जो दो सिफात हैं वो बहुत अहम है। इन अल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बहुत वसी है और बहुत इल्म वाला है। वसी के मानी खुदा की ज़ात की तरफ भी इशारा हो सकता है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, वो कोई महदूद तोड़े हैं कि यहाँ बैठे हुए हैं तो बाकी तरफ नहीं है। एक ये मतलब हो सकता है कि उसकी ज़ात हर जगह मौजूद है। दूसरे का मतलब यह है कि अल्लाह ताला फ़र्ज़ कर लीजिए किसी जगह मौजूद भी हैं, महदूद भी हैं, समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला इतनी गुंजाइश देते हैं कि अगर किसी ने गलत तरफ मुंह कर लिया है तो नमाज हो जाएगी। अल्लाह ताला ये गुंजाइश देते हैं, हमें भी दी है। सफ़र में हमें किबला अगर मुतय्यन नहीं कर सकते तो नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी बग़ैर किबले के, तो क्योंकि अल्लाह ताला वासे हैं, गुंजाइश रखते हैं, हमारी कमज़ोरियों से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते, नाजायज़ किस्म की सख्तियाँ नहीं करते अल्लाह ताला। तो ये इस मानी है। अलीम के मानी है कि तुम्हारे दिलो दिमाग अगर मुखलिस हैं तो कितनी ही दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि गलत किबले की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ ली होगी, तो क्या अल्लाह ताला नमाज़ कबूल नहीं करेंगे? कर लेंगे। तो इस पर बहसें क्यों करते हो? तो अल्लाह की सिफात के हवाले से पूरी बात समझा दी कि खुदा की दुनिया में हरज और तंगी नहीं है, मशरक़ व मगरब की बहसें नहीं हैं। अब हमारे देखिए ना कि मुसलमान उम्मत खाना काबा की तरफ से चारों तरफ से रुख कर दिया है। कोई जुनूब, किसी के जुनूब में खाना काबा आ रहा है, किसी के मशरक में आ रहा है, किसी के मगरब में आ रहा है, किसी के शुमाल में आ रहा है, यानी पूरी दुनिया चारों तरफ हम उसकी तरफ मुंह करते हैं, तो चारों तरफ से उसकी तरफ रुख होता है। तो हमारी तो कोई सिमत नहीं, हम तो चारों तरफ से नमाज पढ़ते हैं, खाना काबा को मरकज़ बना दिया, किबला बना दिया। तो हाँ, वो अब पाकिस्तान में देखिए जितनी पुरानी मस्जिदें हैं उनका किबला बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, 100% खाना काबा की तरफ नहीं है, उसमें टेढ़पन मौजूद है। बल्कि बाज़ मस्जिदें ऐसी हैं कि जो पेट्रा की तरफ जिनका रुख बन गया हुआ, क्योंकि बस लोगों ने समझा कि मगरब की तरफ बनाना है तो मगरब की तरफ रख के बना दिया जिधर भी बन गया। तो बाज़ मस्जिदें पाकिस्तान में भी ऐसी हैं कि जिनका रुख सही नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने की एक मस्जिद है, उसके बारे में कहते हैं कि उसका किबला बिल्कुल ठीक रुख पे है, लेकिन बाद में बादशाह मस्जिद देख लें, इस तरह की मस्जिदें जितनी हैं उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ख़ास तौर से अब जब हमारे पास वो बिल्कुल आ गए पैमाने मापने के अच्छे, तो अब तो काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। जिस मस्जिद में मैं पिछले कई सालों से खुतबा दे रहा हूँ उसका किबला भी गलत निकला, अब वो सफ़ेद टेढ़ी करके बिछाई हुई, उन्होंने देखी हुई है मेरा ख्याल। तो वो बस ये अब जितनी नमाजें हमने पढ़ी 7, 8, 10 साल, वो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई, क्योंकि हम कोई जानबूझ के किबला ख़राब नहीं कर रहे थे। तो ये वासियुन अलीम का मतलब ये है कि खुदा के यहाँ बाद चीज़ों की गुंजाइश होती है, छोटी छोटी बातों पे इस तरह से झगड़ना नहीं चाहिए। जो शरीयत अल्लाह ने बना दी सो बना दी, जो उसमें रुख्सतें रख दी वो रुख्सतें रख दी उसने। अब यहाँ पर एक जुमला उनका जो था उसको अल्लाह ताला ने लिया, उसका पूरा जवाब दिया है। वो जुमला गुमराह कुन जुमला ये था कि ये कहते हैं कि जन्नत में यहूद व नसारा के अलावा कोई नहीं जाएगा, 111 नंबर आयत 12 नंबर 11 में। तो कहा कि यहूद व नसारा, उसके तफसील से जवाब दे दिया, पूरी तसल्ली से उसके तीनों चारों पहलुओं से बात बिल्कुल वाजे कर दी कि इनका ये सारे का सारा दावा ही गलत है। मशरक़ व मगरब की बहसें मैंने नहीं छेड़ी थी, ना तौरात में है ना इंजील में है। तौरात में तो बल्कि खुद कुरान ने भी जिक्र किया इसका, इनको इतनी गुंजाइश दी गई थी कि ये जहाँ हज़रत मूसा वाला ताबूत पड़ा होगा वो किबला बना लें, इतनी नरमी की गई थी। मिस्र में जब तक थे तो हज़रत मूसा के घर को किबला बना रहे, इतनी नरमी थी। वो बहसें कर रहे थे मशरक़ व मगरब की, तो वो उसको अल्लाह ताला ने वासियुन अलीम के लफ्ज़ों में वाज़े कर दिया। तो ये अब एक जो गुमराह कुन जुमला था, ये हमारे यहाँ भी बहुत बोला जाता है। हमारे यहाँ एक ठीक ये जुमला तो नहीं है, लेकिन ये मान अलही व साबी वाला, माफ़ी चाहता हूँ कि बस 70 फ़िरके हैं, 70 में से सारे के सारे दोज़ख़ में जाएंगे, सिर्फ़ एक फ़िरका नाजी होगा, और हर फ़िरका अपने बारे में यही कहता बस ये एक फ़िरका नाजी है, बाकी सारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िरके का लफ्ज़ बोला था, मसलक का लफ्ज़ नहीं बोला था, ये वहाँ से रहना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, जो उस पर होगा वो जन्नत में जाएगा, वो कामयाब नाजी फ़िरका है। तो अहले सुन्नत किताबो सुन्नत पर कायम है, माना अलैहि व असहाबी पर कायम है। अलबत्ता कुछ बाद में आहिस्ता आहिस्ता फ़िकही मसाइल, कुछ अकीदे के मसाइल पैदा होते चले गए, और वो सब के यहाँ हैं। ऐसा कोई ऐसा मसलक नहीं है अहले सुन्नत में से भी कि जिसको हम कह सकें कि वो 100% कुरान सुन्नत पर है, नहीं, कोई भी नहीं। मैं अपने समेत कह रहा हूँ, पता नहीं कितनी गलतियाँ कर रहे हों, कोशिश हमारी यही होती सबकी कि कुरान सुन्नत पर रहें, लेकिन पता नहीं कहाँ गलती लगी हो, कहाँ गलत समझे हों, कहाँ बात ही और हो, कहाँ सबूत ही ना हो लेकिन हम उसको मान कर बैठे हुए हों। तो ये सब कुछ साथ ही चलता है, क्योंकि अल्लाह वासिउन अलीम है, अल्लाह ताला दिल के हालात जानते हैं कि डंडी मार के गलत बात कर रहा है या गलत फहमी वाकई हो गई, इसको समझ नहीं आ रही, इसके पास इल्म ही नहीं है। अगला जो गुमराह कुन जुमला था वो ये था कि वकालु इत्तखज़ अल्लाहु वलदन सुभानहु बल लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहु कानितून। ये कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद भी बना रखी है। ये पुराने कदीम ज़माने में बहुत ही मौसर जुमला है, बहुत ही मौसर, ख़ास तौर से कबायली निज़ाम में। ये पूरी की पूरी तौहीद की सारी बसात को समेट के रख सकता है। भाई अल्लाह का बेटा है, तुम उसको मान नहीं रहे हो, बहुत मौसर जुमला है, कदीम ज़माने में रख कर देखिए। आज भी अरबों को अल्लाह ने कहा मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, सारे लटू हो गए, इतना असर होता है बाप दादा का। तो यही असर जब ये कहते थे कि ये अल्लाह का बेटा है। हम हिंदुओं को देखिए, वो कहते हैं अल्लाह की रूह आती है इसमें, कितनी मौसर बात होती। तो ये मौसर बात थी जिसको फिर अल्लाह ने एड्रेस किया है उन जुमलों के तहत जो मुसलमानों को भटकाने के लिए बोलते थे। भाई तुम कहते हो कि तौहीद है, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, हम तो कह रहे हैं तुम्हें कि अल्लाह ने बेटा बनाया था। ख़ासतौर से नसारा का हम तो कहा कि ये कहते हैं कि अल्लाह ने एक बेटा बनाया है। आगे उसका फौरन जवाब दिया, सुबहानहू, अल्लाह बेटों का मोहताज नहीं है, वो कमज़ोरियों से पाक है। बेटे किन के होते हैं? अल्लाह ताला ने जुमले में सुबहानहू कहा है, लेकिन अगर हकीकत पर देखिए बेटे किन के होते हैं? जिनको बीवियों की, जिनको शोहरों की ज़रूरत होती है, जो इज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करते हैं, जिनके यहाँ ये मोहताजी पाई जाती है, जिनके यहाँ बुढ़ापे का डर होता है, जिनके यहाँ साथ देने का साथी चाहिए होता है, जिनका दिल नहीं लगता है, जिनको उंगली पकड़कर बुढ़ापे में सहारे की ज़रूरत होती है, बच्चों की उनको ज़रूरत होती है। फरमाया सुबहानहू, उसकी ये कमज़ोरियाँ नहीं है, तो बेटे की क्या ज़रूरत है? एक लफ्ज़ पूरी बात को रद्द कर देते हैं अल्लाह ताला, भाई ना मैंने बूढ़ा होना, ना मुझे खाने की ज़रूरत, ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत, कुछ भी नहीं। तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हारे बेटे होते होंगे, मुझे तो ज़रूरत नहीं है। एक मौके पर जो मैंने बात कही पहले शुरू में कही, उसका जवाब यह ना कही है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने कहा एक जगह पे वाज़े लफ्ज़ों में कि भाई मेरी बीवी नहीं है तो औलाद कहाँ से होगी, बीवी नहीं मेरी। तो ये इंसानी कमज़ोरी है ना, मियाँ बीवी की ज़रूरत, उसको अल्लाह ताला ने यहाँ एक लफ्ज़ में बयान कर दिया सारी हकीकत को, कि अल्लाह ताला पाक है इस बात से कि उसके औलाद हो, उसको कोई मोहताजी नहीं है, उसको कोई जज्बा इस तरह का नहीं है कि जिसकी तस्कीन के लिए सब कुछ करना पड़े, कुछ भी नहीं। सुबहाना हो, वो पाक है इससे। आगे देखिए कि आप दूसरी बात क्या कही, बल्लहू माफिस समावाति बल्लस, बेटे की क्या ज़रूरत है, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब कुछ उसी का है। भाई दौलत की ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी, बच्चों के कमा कर लाएंगे, ये करेंगे, ये जत्था बन जाएगा। पुराने अरबों को देखिए ना, 12-12 बच्चे नजरें मानते थे कि मेरे 10 बच्चे हुए तो एक अल्लाह की नज़र चढ़ा दूंगा। नबी अकरीम सल्लम के चचा तायों की बात ऐसे ही है ना। तो फरमाया कि अल्लाह को बच्चों की क्या ज़रूरत है, सारे के सारे ज़मीन व आसमान और जो कुछ उनमें है वो उसी का है। और चलो ये हो सकता है कि अल्लाह ताला नौज़ बिल्ला कमज़ोर पड़ जाए तो कोई ज़मीन कभी काबू से निकल गई, कभी आसमान काबू से निकल गया। फरमाया कुल्लुल लहू कानितून, वो सारे के सारे उसके फरमा बरदार भी हैं। कोई पहलू छोड़ा है बेटा का इनकार करने के लिए, तमाम पहलू वाज़े कर दिए कि वो पाक है, उसकी कोई मोहताजी नहीं है। हमें औलाद की ज़रूरत होती है मोहताजी की वजह से, अल्लाह को कोई मोहताजी नहीं, वो मैंने तफसील कर दी। दूसरा फरमाया कि उसको कोई कमी है तो ज़मीन व आसमान सारे के सारे उसके हैं। और फिर फरमाया कि ऐसा नहीं कि उसकी ताकत के लिए उसको कोई बच्चे चाहिए ताकि मिलकर संभालें, कुल्लुन लहू कानितून, सारे के सारे उसके फरमाबरदार हैं। कोई चीज़ ज़मीन व आसमान में ऐसी नहीं है कि जो उसकी ताबेदारी से बाहर निकलती हो। यहाँ पर रोक लेते हैं, अभी ये जवाब चल रहा है, वक्त हो गया है, तो ये जवाब का भी समझिए कि आगाज़ तमहीद है। आगे मज़ीद अल्लाह ताला इसका जवाब देंगे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।